मस्जिद और उपासना।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम श्रृंखला मस्जिद और उपासना की एक अन्य कड़ी लेकर उपस्थित हैं स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में पहले भाग में मस्जिद के महत्व की चर्चा की जाती है, इसके बाद संसार की किसी मशहूर मस्जिद का उल्लेख किया जाता है। आज के कार्यक्रम में हेरात की जामा मस्जिद का उल्लेख किया जाएगा।
मस्जिद वो स्थान है जहाँ पर मनुष्य नमाज पढ़ता है और ईश्वर की उपासना करता है। मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है सजदा करने का स्थान। सजदा वो अवस्था है जिसमें नमाजी पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने नतमस्तक रहता है। मस्जिद लोगों के प्रशिक्षण का भी स्थल है। यहाँ पर नैतिकता का पाठ दिया जाता है। मस्जिद में उपस्थित होकर मनुष्य अपने भीतर नैतिक विशेषताओं को अधिक सुदृढ़ कर सकता है। मस्जिद को आग की ऐसी भट्टी की संज्ञा दी गई है जहाँ पर मनुष्य सोने की भांति तपकर शुद्ध हो जाता है। मस्जिद के माध्यम से आंतरिक इच्छाओं पर सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मनुष्य को मस्जिद से बहुत लाभ है यदि वो उसका प्रयोग करे।
इस्लामी समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समाज में परस्पर सहयोग किया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि लोगों की आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मस्जिद में एकत्रित होकर नमाज पढ़ने का अर्थ यह है कि लोग एक दूसरे की समस्याओं से अवगत हों और उनके समाधान के बारे में प्रयास करें। इस्लामी समाज को एक महापरिवार के रूप में बताया गया है, जिसके हर सदस्य का कर्तव्य बनता है कि वह अन्य सदस्यों का हर हिसाब से पूरा ध्यान रखें। इस नियम के अनुसार इस्लामी समाज के सदस्यों का दायित्व बनता है कि वे इस परिवार को एकजुट बनाए रखें और सदस्यों की हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहें।
मस्जिद की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि वहाँ से वंचितों की परेशानियाँ दूर की जाएँ। मस्जिद में मौजूद लोगों की मानसिकता ये हो जाती है कि लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जाए। इस्लाम के आरंभिक काल से ही मस्जिद वंचितों की समस्याओं का केंद्र रही है। उस काल में जब भी कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होता था तो वो मस्जिद आकर अपनी समस्या पेश करता था, जिसका समाधान वहीं पर कर दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन काल से ही मस्जिदें समस्याओं के निवारण का केंद्र रही हैं।
एक बार हजरत अली अलैहि सलाम ने नमाज की हालत में मस्जिद में एक फकीर को अपनी अंगूठी दे दी थी, जिसका उल्लेख ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह माईदा की आयत संख्या 55 में किया है। इस्लाम में दान, दक्षिणा, परोपकार, दूसरों की सहायता और इसी प्रकार की विशेषताओं का बहुत उल्लेख करते हुए इन कामों के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुसलमानों को एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार किया जाए। आज भी दुनिया की बहुत सी मस्जिदों से गरीबों की मदद की जाती है। उदाहरण स्वरूप, जब कहीं कोई भूकंप आता है या बाढ़ आ जाती है तो लोग मस्जिदों के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों या भूकंप प्रभावितों की दिल खोलकर सहायता करते हैं। ऐसा इस्लामी देशों में बहुत अधिक होता है।
कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको अफगानिस्तान की मशहूर जामा मस्जिद से अवगत करवाएंगे। हेरात की जामा मस्जिद को अफगानिस्तान में कला, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अति प्राचीन काल में ये एक उपासना स्थल था। बाद में पारसियों ने इसे अग्निकुंड बना दिया। कुछ समय तक ये स्थान अग्निकुंड के रूप में रहा। हेरात के लोगों के इस्लाम स्वीकार करने के बाद सन 29 हिजरी कमरी में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया।
हेरात की जामा मस्जिद अफगानिस्तान में वास्तुकला का ऐसा नमूना है जिसे राष्ट्रीय गौरव कहा जा सकता है। इस मस्जिद में 1,00,000 से अधिक लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। हेरात की जामा मस्जिद वास्तव में काफी बड़ी है। इसमें 460 गुंबद, 130 छोटे बड़े हॉल, लगभग 444 स्तंभ और 12 गुलदस्ते हैं। इस मस्जिद में 4 बड़े हॉल, 4 दरवाजे और 4 बड़े शिलालेख हैं, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें और कुछ तत्वदर्शियों की कविताएं लिखी हुई हैं। हेरात की जामा मस्जिद में पत्थर का एक बड़ा सा मिंबर और पुस्तकालय भी है। इस पुस्तकालय में 4,000 से अधिक किताबें मौजूद हैं। इस मस्जिद से लगा एक मदरसा भी है, जिसको कूफी, सुल्स और नस्तालिक लिपि में बहुत ही सुंदर ढंग से सुसज्जित किया गया है।
हेरात की जामा मस्जिद पर की गई चित्रकारी अफगानिस्तान की जनता की आस्था और उसके विश्वास की गाथा सुनाती है। हेरात की जामा मस्जिद की एक विशेषता ये है कि इसकी वास्तुकला किसी एक काल से विशेष नहीं है, बल्कि इसमें कई शासन कालों की वास्तुकला शैली को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। इस मस्जिद पर की गई चित्रकारी दर्शक को जहां एक ओर उसकी विदित सुंदरता की ओर आकर्षित करती है, वहीं पर दूसरी ओर ये उसे इस चित्रकारी में छिपे सांस्कृतिक एवं धार्मिक रहस्यों की ओर आकर्षित करती है।
हेरात की जामा मस्जिद अपने काल में भांति भांति के उतार चढ़ाव की साक्षी रही है। विभिन्न शासन कालों में इसको नुकसान भी पहुंचाया गया और इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। सन 414 में हेरात की जामा मस्जिद आग में जल गई। उस समय की मस्जिद लकड़ी की बनी थी, जिस पर पेंटिंग की गई थी। बाद में हेरात के शासक ख्वाजा मोहम्मद ताकी के प्रयासों और जनता के सहयोग से मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस घटना के लगभग 2 शताब्दियों के बाद शेखुल इस्लाम फखरुद्दीन राजी के सुझाव और गयासुद्दीन गौरी के आदेश पर हेरात की जामा मस्जिद को पक्की ईंटों, टाइलों और रंगारंग डिजाइनों से सजाया गया।
चंगेज खान के हमले में हेरात की जामा मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचा था। सन 707 हिजरी कमरी में सुल्तान गयासुद्दीन के आदेश पर मस्जिद के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कराई गई। साथ ही मस्जिद के उत्तरी भाग में एक मदरसे का निर्माण कराया गया, जिसका नाम गयासिया रखा गया। मस्जिद के लिए कांसे की एक बड़ी डेग वक्फ की गई है। हेरात की जामा मस्जिद के आंगन के एक कोने में पीतल की एक बहुत बड़ी डेग रखी हुई है, जिसे कला की दृष्टि से आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु माना जाता है। प्राचीन काल में शुभ अवसरों पर धार्मिक आयोजनों में इसमें शरबत बनाकर लोगों में बांटा जाता था। 4 शताब्दी हिजरी में बनाई जाने वाली ये डेग 4.5 मीटर ऊंची और 1.5 मीटर गहरी है। इस मस्जिद में अजान देने के लिए जो विशेष स्थान बनाया गया है, वो 17-36 मीटर ऊंचा है, जिसका व्यास 7-10 मीटर है।
जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हेरात की जामा मस्जिद की कई बार और कई कालों में मरम्मत कराई जा चुकी है। 10वीं शताब्दी हिजरी शमसी में हुसैन बायकरा के शासनकाल में उनके वजीर अमीर अली शीरनेवाई के कहने पर मस्जिद की हॉल की पुनः मरम्मत कराई गई और इसकी दीवारों तथा स्तंभों को सुंदर पत्थरों से सुसज्जित कराया गया था।
तेरह सौ 22 हिजरी में अफगानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद जाहिर शाह के काल में अब्दुल्ला खान मलिक यार के प्रयासों से हेरात की जामा मस्जिद की मरम्मत का काम करवाया गया। इस काम के लिए मलिक यार ने पहले उन वास्तुकारों का चयन किया जो प्राचीन काल की वास्तुकला में दक्ष थे। बाद में इन्हीं दक्ष वास्तुकारों की सहायता से मस्जिद की मरम्मत का काम कराया गया। हेरात की जामा मस्जिद की दीवारों पर सुलेखन का काम दीवार पर सुलेखन के तत्कालीन विशेषज्ञ उस्ताद मुल्ला मोहम्मद अली अत्तारी हिरवी ने किया था। रोचक बात यह है कि हेरात की जामा मस्जिद में प्राचीन काल से मरम्मत का कोई ना कोई काम होता चला गया है। इसी बात के दृष्टिगत हेरात के लोगों में ये बात प्रचलित हो चुकी है कि इस मस्जिद में काम हमेशा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। जिस दिन भी हेरात की जामा मस्जिद का काम पूरी तरह से रुक जाएगा, उसी दिन कयामत आ जाएगी।
हेरात की जामा मस्जिद के बारे में अंतिम बिंदु यह है कि संसार की अन्य मस्जिदों की ही भांति यह मस्जिद केवल उपासना तक ही सीमित नहीं है, अर्थात यहाँ पर केवल नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि लंबे समय तक हेरात की जामा मस्जिद अफगानिस्तान में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जानी जाती रही है। इतिहास के विभिन्न कालों में यहाँ से महान धर्मगुरु, विचारक, तत्वदर्शी और दार्शनिक पैदा हुए हैं जिन्होंने विश्व ख्याति अर्जित की है। इन्हीं में से एक ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं, जिन्हें पीरे हेरात के नाम से जाना जाता है।